We can't hear you, Swami.
Can you hear me now?
Yeah, I will.
Coffee banana.
No, we can't hear you.
Sir, am I audible now?
You are audible. Go ahead, start the recording first, huh?
Okay. Hello.
Yeah, Swamya, go ahead.
Okay. So, hi everyone, and very good evening to all. I welcome you all to Pyramid Technoplast Q1 FY27 con call. Please note that discussion on today's call may include certain forward-looking statements and must be therefore viewed in conjunction with the risk pertaining to the business. We have on call today Mr. Vijay Kumar Agarwal, the Managing Director, and Mr. Jay Prakash Agarwal, CFO and Whole-Time Director. I now request the management to just proceed with the opening remarks, and post that we'll open the floor for Q&A. Thank you, and over to you, sir.
Thank you, Soumya. A very good evening, everyone, and welcome, everyone. And thanks for joining us for our Q1 2027 earnings call. So we have started FY27 with a strong and structurally healthier operating platform. So today we have an installed capacity of 20,936 metric tons for the quarter, while volumes stood at 1,292 metric tons, translating into a capacity utilization of around 62%. While volumes in the quarter were temporarily impacted, particularly by a little slowdown in the exports of various products, we believe this is a near-term demand disruption rather than a structural issue. Importantly, unit economics have remained resilient and are actually improving. EBITDA per ton increased to approximately 16,380 in Q1 FY26, compared with 11,252 in Q1 FY26 and 15,053 in Q1 FY26, Q4 26. This clearly demonstrates that despite the temporary volume impact, our pricing, product mix, and operating efficiency are supporting profitability at the unit level. Now, coming to the strategic developments. So, we are happy to announce that we are expanding in Kutch, Western India. It's a progressing as planned. We are investing approximately 20 to 25 crore in a new facility with a capacity of 10,000 IBC units per month, which is expected to be commissioned by March 2027. This facility will strengthen our presence in Kutch and Western India while providing logistical benefits through lower freight cost, faster deliveries, and customer service satisfaction. We have also received government subsidy approvals for our newly installed Vadodara unit and Bharuch facility, amounting to approximately 24.9 crore for Vadodara and 10.5 crore for Unit 7 Bharuch, which is spread over 10 years. These incentives will effectively reduce the cost of our investments and improve project economics, ROCE, and payback over the long term. So our Vadodara facility is in full swing now across SDP, IBCs, and MS drums, and is already operating above 70% utilization. We expect it to reach 80% during this year. The facility contributed approximately 43 crore or 19% of revenue from operations in this quarter, Q1 FY27. The focus now is to sustain this utilization, extract further operating leverage from the infrastructure already built. Our green energy initiatives are also beginning to contribute meaningfully because of two reasons. Not only due to the price advantage, but also we are getting ESG benefits out of it so that we can reduce our carbon footprint and represent India at the global level. The 6.6 megawatt solar plant was commissioned in October 2025, followed by an additional 5 megawatt in Bharuch and 2.25 megawatt in Maharashtra. And 1 megawatt is still pending to be commissioned, which is going to be commissioned very soon, probably next quarter. We achieved approximately 2 crore of savings in this quarter of Q1 FY27. With the full 14.25 megawatt capacity expected to deliver around 15 crore of annual savings. Similarly, our recycling plant commissioned in October has an annual capacity of 5,000 metric tons and can address around 10-12% of our raw material requirements. So this is again a meaningful ESG benefit, and we are the only company in India that is into solar and recycling both. The plant processed around 150 metric ton in Q1 FY27 and generated around 25 lakh of EBITDA, with FY27 EBITDA contribution estimated at around 2 crores. Our financial front revenue grew by 36% year-on-year to 222 crores. Growth has driven primarily by price increase, as sharp increases in raw material costs were passed through to customers. SDP polymer drum tonnage was down 4% year-on-year, and IBC volumes were little hit as export demand suffered due to the war. This was partly offset by strong MS drums growth and continued IBC polymer
ना ठीक है हाँ हाँ ले लिया मैंने
Please mute. Gross profit rose 19% year-on basis, but gross margin compressed a little to 23% as raw material cost rose in step with price increases. Importantly, gross margin in rupees ton terms for SDP remained stable, the pass-through that protected per unit profitability. EBITDA grew 50% year-on-year basis, with margins at 10%, reflecting the operating leverage kicking in as the total expenses rose only modestly despite new plant commissioning. PAT grew by 32% year-on basis to 10.5 crore, with margins at 5% despite a sharp rise in financial cost by 179% and depreciation by 61% year-on-year basis, tied to capacity expansion. For financial year 27, our objective remains to deliver approximately 15% revenue growth and EBITDA margins on upwards of 10%. We expect this to be supported by higher utilization, volume recovery, greater contribution from value-added products, and solar savings and recycling benefits. We have also maintained a disciplined approach to capital allocation, with FY27 CapEx planned at approximately 20 to 25 crore, primarily towards Kutch expansion and deployed in line with actual. To summarize, the last phase was about building capacity. FY27 and the years ahead are about filling that capacity and converting it into stronger earnings and returns. With Vadodara ramping up, Kutch adding future capacity, unit economics strengthening, and our solar and recycling initiatives begin to contribute, we believe Pyramid is well positioned for the next phase of sustainable growth and improved profitability. Thank you very much. And thanks for continued trust and support. Now I would be happy to answer all the questions. Soumya, over to you. Hello. Soumya, are you there? Hello. सौम्या, आर यू देयर?
सर वी कैन कमेंस, प्रश्न डाल सकते हैं
यस यस,
जी। नमस्कार विजय बाबू, नमस्कार जयप्रकाश जी, एंड थैंक यू फॉर द
अंकल
अपॉर्चुनिटी। हाँ सर, सर जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही आउटलाइन किया कि 62% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स रहा है हमारा, सो
सर,
गोइंग अहेड एंड फैक्टरिंग इनटू द वेजरीज ऑफ द आरएम फ्लक्चुएशंस, स्टेडी सेट हम क्या देखते हैं सर? ये जो 20,936 की क्वार्टरली कैपेसिटी है एंड ऑफ द ईयर या कमिंग क्वार्टर्स में, हम क्या इंप्रूवमेंट यूटिलाइजेशन लेवल से पहले देखते हैं सर? इससे थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए।
लगभग 70% चले जाएंगे एरिया जो 60 बटा 60।
आपकी आवाज सर भी क्लियर नहीं आ रही।
हेलो,
हाँ सर बताइए।
आ रही है
प्रणाम
आवाज?
सर। हाँ प्रणाम सर जी बोलिए जी।
ये जो आप वाडा का पूछ रहे हैं, ओवरऑल पूछ रहे हैं सारा?
सर ओवरऑल ओवरऑल पूछ रहा हूँ, और वाडा के विषय में भी आप अलग से बताएं तो ठीक है, दोनों ही
वाडा में
बताइए।
जो भी 10% बचा है यूज होता है, मेरे को लगता है इस साल के फिनांसियल ईयर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ओवरऑल जो आप 62% देख रहे हो, 70% तक हम टच करेंगे इस साल।
अच्छा सर, और सर ये जो
पूरा
वाडा का
मिडिल
फ्री
ईस्ट में जो क्या है, मिडिल ईस्ट में बाहर होने के कारण फ्रेट कॉस्ट बहुत बढ़े हुए हैं, इसलिए एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है उसमें। इसके लिए ये 2-4% का फॉल रहा है एक क्वार्टर का, और जो ग्रोथ होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ है, तो अगले क्वार्टर से वो सब मैच होना चाहिए। कुछ फ्रेट भी अभी तक तो कम हुए नहीं है, जब हो तो उसके बाद एक्सपोर्ट भी चालू हो जाएगा।
सर टोटल मिक्स का हमारा एक्सपोर्ट क्या परसेंटेज है? तो
बहुत मामूली है सर, 2-3%, 4%, 2% का।
फिर हम फिर उसको सर एक विपद की तरह क्यों उल्लेख कर रहे हैं जब दो
नहीं
पे
नहीं नहीं उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, आईबीसी मेरा मेन एक्सपोर्ट होता था, प्लस जो प्लास्टिक ड्रम है उसमें केमिकल पैक होकर भी एक्सपोर्ट होते थे मिडिल ईस्ट वगैरह में, वो
अच्छा
भी
सर
नहीं हुआ ना। मेरा हमारा कस्टमर जो हमारा माल लेके कस्टमर पैक करके बेच रहा है, उसकी भी सेल खत्म रुकी है ना वहां पर,
वो डीम
उसमें
एक्सपोर्ट वाली बात हो गई जी सर
डीम
जी।
एक्सपोर्ट नहीं है। हमारा ड्रम यूज करते हैं वो एक्सपोर्ट करने के लिए, डीम एक्सपोर्ट नहीं है वो।
अच्छा
वो
सर
ड्रम हमसे परचेज करते हैं, उसमें केमिकल पैक करते हैं और उसको माल बाहर भेजते हैं। वो सेल आप देखेंगे तो सबके रिजल्ट में ही वो वॉल्यूम वैल्यू बढ़ा हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम सबका कम हुआ है इस क्वार्टर में। प्लस
राइट
कोस्ट इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो उन सामने वाले को कोस्ट भी ज्यादा लग रहा है ड्रम का।
करेक्ट सर। सर जैसे आपने स्लाइड नंबर 7 में पर टन की जो प्रॉफिटेबिलिटी बताई है 16,380 रुपया पर टन है, ये नंबर कैसा शेप होता हुआ दिख रहा है सर गोइंग अहेड? ये हाईएस्ट है सर शायद इस अभी तक के जानकारी के हिसाब से।
लेकिन टोटल देखिए नॉर्मलाइज हो गया। अभी जो मार्केट में 160 रुपए के आसपास का सेलिंग प्राइस है, वो धीरे धीरे 140 के आसपास आएगा। इतना फॉल होगा, वो ईपी डाटा जो हम बता रहे हैं कि 10-10 के ऊपर डबल डिजिट में रहेगा, वो 10-11% ही पहुंच जाएगा।
ये साल हमारा टारगेट यही है कि इसको और 10 से ऊपर 11-12% का अचीव करें, सो
सर
दैट वी कैन फोकस मोर ऑन कमिंग ईयर्स।
जयप्रकाश जी, ये जो आप एबिटा मार्जिन की जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसमें जो लीवर्स प्ले आउट हो।
नहीं भाई, देखिए बताता हूँ। ये जो अभी ड्रम की सेलिंग प्राइस है वो 160 रुपए के आसपास की है, सुन रहे हैं कपूर
हाँ
साहब?
जी, बिल्कुल सुन, ध्यान से सुन रहा हूँ सर,
हाँ,
बोलिए।
उसके
हाँ
उसके बाद ये आने वाले मेरा जो रीडिंग कहता है उसमें 2-5-6 महीने के अंदर ये 140 के आसपास में सेटल होगा। 20 रुपये
ओके
यहाँ से प्राइस नीचे आएंगे। ईपी डाटा जो अभी आप देख रहे हैं हमारा 10% के आसपास हो रहा है, वो हमारे मेरे को लगता है नीचे आने के बाद वो 11% के आसपास दिखेगा।
ओके। तो सर ये कोरिलेशन कैसे है सर कि प्राइस फॉल से माने हम पास ऑन नहीं करेंगे पूरा कस्टमर को?
नहीं, प्राइस तो पास हो नहीं करेंगे पूरा, वो फॉल इसलिए है कि फिर वॉल्यूम आपको जो ग्रोथ वॉल्यूम में दिखेगा। अभी क्या वैल्यू में ग्रोथ दिख रहा है, इसलिए ईपी डाटा कम दिख रहा है आपको। एक्चुअल में
अच्छा
ये
सर
वो पुरानी प्राइस रहती तो ईपी डाटा इस बार 12% का होता, लेकिन
जी।
जो प्राइस जो 100 रुपए के 150 रुपए में हो रहा है, इसलिए वैल्यू तो बढ़ गई लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ उतना नहीं हुआ, तो वो ईपी वैल्यू के कारण वो ईपी डाटा आपको कम दिख रहा है इस साल, इस बार इस क्वार्टर में।
जी सर, और सर ये जो वाडा का जो फेज 2 कैपेक्स है जिसमें आप 400 करोड़ का रेवेन्यू बता रहे हैं, ये हम कब कब किक इन करेंगे और एग्जैक्टली इसका क्या रोड
शादी
मैप?
फिनेंशियल ईयर में करेंगे हम मार्च के बाद।
ओके, और इसमें कैपेक्स कितना लगेगा सर?
20 करोड़ के आसपास में एक फेस और आ जाएगा, 20 से 25 करोड़ रुपया और लगेगा और एक फेस आ जाएगा।
ये साल का तो हमारा कुछ भी चलेगा।
ओके, सही सही बात है सर। तो सर, जैसे जयप्रकाश जी, जैसे आप बता रहे थे कि ये ईयर में हमें एफिशिएंसी पर जो वर्क करना है जिससे हमारी परसेंटेज मार्जिन इंप्रूव करेगी, उसमें शायद रिसाइकलिंग का भी मेजर रोल रहना चाहिए। तो
जी
उस एस्पेक्ट पे सर, अभी हम क्या काम कार्य कर रहे हैं? व्हाट इज इन वर्क इन प्रोग्रेस फॉर देयर एंड हाउ विल
वो अभी
दैट
क्या है, अभी क्या है सर, ईपीआर वगैरह का पोर्टल 3 महीने से बंद ही पड़ा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट के साइड से जो चाहिए सपोर्ट वो जो ईपीआर वगैरह का वो अभी मिल नहीं पा रहा है। वो बोल तो रहे हैं कि 15-20 दिन और लगेगा, उसके बाद सिस्टम चालू होगा। वो जब सिस्टम चालू होगा तो उसके बाद उसमें काम जब बढ़ जाएगा। अभी हम लोगों को ईपीआर वगैरह पास ऑन नहीं दे पा रहे, वो पोर्टल बंद होने से आज 4-5 महीने से पोर्टल बंद है गवर्नमेंट का।
बट वी आर
जी सर।
प्रोसेसिंग मटेरियल इन दिस, वो बेनिफिट तो आएगा हमें।
ओके, तो सर अभी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारा, हम वी आर ऑलरेडी सर 40 दिन 42 दिन हो गए ये इस क्वार्टर के लिए भी, आप बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस सेंटिमेंट कैसा देख रहे हैं और अभी तकलीफ कहाँ
अच्छा
कहाँ है
अच्छा
सर हमारे?
कोई तकलीफ नहीं आ रही, अच्छा ही हो रहा। खाली एक्सपोर्ट जो हम दुबई वगैरह माल भेज पा रहे थे वो नहीं भेज पा रहे, बाकी वो सेल वगैरह अच्छी है, मार्जिन भी अच्छा है, कोई इशू नहीं है।
जी सर, ठीक है सर, मैं फिर से लाइन में आता हूँ। थैंक यू।
थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम अंकित कनोडिया, प्लीज गो अहेड।
हाँ, नमस्कार विजय जी और जयप्रकाश जी। सर, जब जब से हमारी कंपनी आईपीओ लेके आई है और आईपीओ के बाद जो हमारा फर्स्ट कॉल हुआ था, तब से लेके अगर अभी तक की हमारी जर्नी को मैं मैप करूं, तो हमने जो जो चीज बोला था और हमारे हाथ में जो जो चीज थी वो हमने की है, बीट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन, और अभी भी इतना, मतलब जितना हमने फर्स्ट कॉन कॉल में बोला था उससे ज़्यादा कैपेसिटी एक्सपेंड किया है। इनफैक्ट हमने उस समय सोलर और रिसाइकलिंग की बात नहीं की थी, वो भी किया है। एंड फ्रॉम अ वॉल्यूम पर्सपेक्टिव हमारा ग्रोथ अच्छा हुआ है पूरे पीरियड में, प्रोडक्ट मिक्स भी जैसे हम सोच रहे थे वैसा ही हुआ है। लेकिन एक जगह जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो मार्केट कंट्रोल्ड है, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो है पॉलीमर रेजिन की प्राइसेस, राइट? और वो बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएट हुए हैं। हमारा जब आईपीओ आया था तब 110 के आसपास था, फिर वहाँ से आई थिंक 80-85 तक गया, और फिर वहाँ से अचानक से शॉर्ट रन अप हुआ है लास्ट 2 क्वार्टर में। तो मैं सर कोई प्रेडिक्शन या प्रोजेक्शन नहीं मांग रहा हूँ, बट मैं डायरेक्शनली नेक्स्ट 2-3 साल के लिए हम कैसे प्रिपेयर्ड है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कैपेसिटी पूरी बन गई है और बहुत सारी एफिशिएंसी भी इम्प्रूवमेंट की आ गई है। खाली एक ही चीज़ हमको रोक रही है कि वो जो हमारी रॉ मटेरियल के प्राइस के जो फ्लक्चुएशन है, उससे
देखिए,
रिलेटेड अगर आप कुछ समझा पाएं कि आपको आगे लॉन्ग टर्म में कैसा दिखता है 2-3 साल।
सर जब आग लगेगी तो धुआं माने उसमें झुलसे भी ना, या तो थोड़ी तो सिकन आने ही वाली है। लेकिन उसके लिए क्या है, पहले हम इंपोर्ट करते थे तो उस समय हम 2 से 3 महीने तक का भी स्टॉक कैरी करते थे। आज के डेट में इंपोर्ट बहुत कम कर दिए हैं, लोकल पर कन्वर्ट कर लिया है, और इंपोर्ट करते भी हैं तो लोकल मार्केट से कम भी 5-7-10 रुपया किलो यदि इंपोर्ट में कम में रेट में मिलता है तो ही कॉल ले रहे हैं। तो ये 2 महीने जो 6 महीना भी गया है मार्च के बाद से जो देख रहे हैं 4-5 महीना, उसमें इंपोर्ट जो किए हैं उसमें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है, कोई तकलीफ नहीं हुआ। प्लस लोकल में तो जिसमें जो प्राइस है उसी प्राइस में लेकर उस सामने बेचना है, तो वो प्राइसिंग का लॉस कम चांस है आने का। और जनरली फर्स्ट वीक में हम लोग पहले महीने के फर्स्ट वीक में ऑर्डर सारे बुक हो जाते हैं, तो पूरा महीना हमारे को फ्री हो जाता है, तो हम उससे आपसे माल उठाते करते हैं, तो बहुत ज्यादा स्टॉक लॉस होना, प्राइसिंग का लॉस होना चांस नहीं है।
यस सर। और सर, मेरा सेकंड और लास्ट क्वेश्चन ये की है कि मैंने ऐसे बाकी B2B कंपनी में भी देखा है कि पहले एबिट्टा पर टन में इम्प्रूवमेंट आता है और उसके बाद एबिट्टा मार्जिन में दिखता है, एक लैग, 2-3 क्वार्टर का लैग या 1-2 क्वार्टर के लैग के बाद। क्या हमारे बिजनेस में भी हम ऐसा ही समझे, क्योंकि एबिट्टा
वैसे
पर टन
समझ
लास्ट 2 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा जंप खाया है, तो क्या इसको
जी सर,
डायरेक्शनली ऐसा
ये
समझना?
सर मार्केट ने इस चीज को ठीक से रीड नहीं किया अपने रिजल्ट को, नहीं तो काफी अच्छा अपना आप दूसरे सीएसई से भी कंपेयर करेंगे ना, तो इस उठापटक में भी बहुत अच्छी मार्जिन कंपनी ने गेन किया है। और ये आप जैसे ढंग से जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगी उससे अपना ईपी डाटा और इम्प्रूव होता जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम वैल्यू जो दिख रहा है ज्यादा वो कम होगा, अब वॉल्यूम ग्रोथ होगा तो ईपी डाटा ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट हो जाएगा ना उसमें सर।
थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम कुमार सौरभ, प्लीज गो अहेड।
कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गुड सेट ऑफ नंबर सर। मेरा एक सवाल है सर, हमने 11 से 12% का मार्जिन गाइडेंस दिया और 15% सेल्स ग्रोथ का, और अभी हमने लगभग 9.5% का मार्जिन किया है। तो अगले 3 क्वार्टर गिवन अभी जो पॉलीमर प्राइसेस के वो सब का रेजिन का प्राइसेस चल रहा है, आर यू कॉन्फिडेंट कि हम 11 एटलीस्ट कर लेंगे? और अगर करेंगे तो इज इट बिकॉज
नहीं,
कि
मैं
हमने जो
उसमें उसमें दूसरा बोला सर, ये जो अभी प्राइस चल रही है ना वो 160 रुपये के आसपास का पॉलीमर का प्राइस का सेल वगैरह हम लोग कर रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से 20 रुपया कम से कम मार्केट नीचे आएगा पॉलीमर का। वो
ओके
जैसे ही वो प्राइस नीचे आया तो उसके क्या होगा कि वॉल्यूम ग्रोथ होगी और वैल्यू कम होगा। अभी वैल्यू जो चीज हम पहले 120 रुपये में बेच रहे थे वो 160 रुपये में बेच रहे हैं, तो 40 रुपये का वो जो गैप है ना वो हमारे ईपी डाटा को 10 से नीचे रख रहा है। जैसे वो गैप थोड़ा कम होगा वो 11 आराम से पहुंच जाए।
ओके सर। और सर दूसरा क्वेश्चन ये कि लास्ट क्वार्टर आपने बोला था हम लोग इस साल लगभग 80 CR का एबिटा करेंगे, बट अगर मैं 11% का भी नंबर लूं तो ऑलमोस्ट 86 CR का एबिटा आता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम 80 से 85, 86 CR FY27 में कर पाएंगे?
पूरा होप है सर।
ओके सर, ओके। और सर एक लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक आपने अपने वेलकम नोट में भी बोला कि सब लोग रियलाइजेशन बढ़ाए, वॉल्यूम कम किए हैं, गिवन हम केमिकल इंडस्ट्री से काम करते हैं और मार्केट में ऐसा लग रहा है कि केमिकल सेक्टर का रिवाइवल हो गया है, बट आपको लगता है कि वॉल्यूम बेस्ड रिवाइवल हुआ है सेक्टर का, या अभी भी ये बस रियलाइजेशन और इन्वेंट्री गेन चल रहा है, रियलाइज अभी भी
देखिए
वॉल्यूम नहीं आया है?
केमिकल में ऐसा है सर, कौन से केमिकल वाले कौन से एरिया में काम कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं ना उनके साथ दिक्कत है, बाकी बाकी ऑल बाकी वर्ल्ड वाइज जहां भी दूसरी जगह काम कर रहे हैं उनका काम अच्छा चल रहा है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है।
ओके सर।
मिडिल
और
ईस्ट
सर
में जो माल
लास्ट
जा रहा था वो तो इतना ज्यादा है कि वो नहीं सर्वाइव कर वो दे पा बेच पा रहे हैं।
ओके सर, और लास्ट क्वेश्चन सर हमारा इस क्वार्टर एज यू सेड मिडिल ईस्ट और एक्सपोर्ट सफरिंग के कारण 62% पे रह गया वॉल्यूम, और हम बाई ईयर एंड 80% के लिए गाइड कर रहे हैं, तो
80%
ऑलमोस्ट 18% का
से माने नहीं सर, ओवरऑल हम 75 के आसपास, 70-75% रहेगा ओवरऑल।
ओके
अच्छा अभी ये जो बाड़ा का जो है वो 70% है, वो 80% पे चला जाएगा, तक वहां कैपेसिटी और एड कर लेंगे तो वो वैसे ही है।
ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम गणेश नागर शेखर, प्लीज गो अहेड।
हेलो सर। सर तो मेरा पहला क्वेश्चन हमारे कच्छ के प्लांट के बारे में है, तो वहां पे आपने बोला है कि 10,000 पर मंथ का IBC कैपेसिटी रहेगा, तो क्या ये बोलना सही रहेगा कि लगभग 90 से 100 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल उस प्लांट से रहेगा हमको?
हाँ यदि फुल फ्लेज में चलने स्टार्ट होने के बाद, फुल फ्लेज प्रोडक्शन और स्टार्ट होने के बाद आएगा, लेकिन
समझा
स्टार्ट में इतना ज्यादा नहीं मान के चल रहे हैं, 50 करोड़ का रेवेन्यू वहां से मान कर चल रहे।
समझा। और FY28 से ही वहां से अपने को कमर्शियल प्रोडक्शन करना चालू हो जाएगा ना अपना? ठीक है। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था, अगर मैं हमारा यूटिलाइजेशन नंबर्स देखूं तो हमारा जो नया वाडा का प्लांट है वहां पे हमको 70% के आसपास यूटिलाइजेशन मिल रहा है, और जो भरूच वाला है वहां पे कम हो रहा है, तो क्या हम ऐसा है कि वहां पे कुछ इंसेंटिव्स मिल रहे हैं इसलिए वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है कि वाडा में?
ऐसा नहीं है, मेरी आदत है कि हम थोड़ी कैपेसिटी ऐड कर लेते हैं। वाडा में क्या है, वो सब्सिडी लिए तो मार्च तक हम कैपेसिटी ऐड नहीं कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा मार्च के बाद ही बढ़ा सकते हैं सब्सिडी के कारण, इसलिए वहाँ कैपेसिटी ऐड नहीं किए तो वो फुल फ्लेज जो प्लांट धीरे धीरे 80% भी चला जाएगा। लेकिन मार्च के बाद जैसे कैपेसिटी ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा कैपेसिटी रखनी पड़ती है, इसलिए रखा हुआ है प्लस।
समझे, गॉट इट। और सर अगर मैं हमारा ये देखूं कैपेसिटी देखूं तो हमारा Q4 में जो कैपेसिटी था वो 16,000 के आसपास था, वो हमारा आज 21,000 के आसपास है, बट हमारा प्रोडक्शन पिछले 6 क्वार्टर मोटा मोटी फ्लैट ही रहा है, लगभग 13,000 के आसपास ही रहा है, तो क्या हम नियर टर्म में कुछ मेजर ड्राइवर्स देखते हैं जिसकी वजह से ये रैंप अप होने का चांस आपको दिख रहा है?
10% बढ़ेगा सर ये,
अच्छा, मतलब जो आपका अभी जुलाई के नंबर्स भी दिख रहे हैं उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि थोड़ा टाइम
हाँ,
लगेगा? ठीक
हो जाएगा, है दिख रहा है।
है ठीक है ठीक है सर। और सर दो बस रेगुलर बुककीपिंग क्वेश्चंस थे। एक तो हमारा जो ये था, एक में पीयूसी अपना पोल्यूशन कंट्रोल का ये चाहिए था, वो मिल गया है क्या हमको, जो रिसाइकलिंग प्लांट है?
नहीं, मिला है, मैंने पूरे 100% नहीं मिला है, 90% काम हो गया, एक लाइसेंस हो रहा है जो अभी नहीं आया,
अच्छा, और
एक फेज
तो
आ गया है, दूसरा फेज आना बाकी है।
अच्छा, बट हम मतलब पार्शियल कैपेसिटी चला सकते हैं उसमें?
यस यस, वी आर फोकसिंग दिस ओनली फ्रॉम दिस मंथ ओनली, तो अच्छा
गॉट
खासा
इट
वॉल्यूम करने के प्लानिंग
कर रहे हैं,
में
ऑलरेडी चालू है।
है। गॉट इट। और सर आपने बोला था कि पिछले क्वार्टर में एक कुछ नया प्रोडक्ट लाइन में आप एंट्री करने की सोच रहे हैं, तो वो अभी स्टैंड स्टिल पे है कि कभी कब लॉन्च करने का प्लान है?
टेस्टिंग फेस में से कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन वो मशीन ऐड हुई है, वो अभी मार्केटिंग चालू है उसका।
मतलब कस्टमर हैज आल्सो टेकन सम ट्रायल लॉट, वो भी अपने कस्टमर को भेजेंगे, तो 1-2 महीने का प्रोसेस है सर। जब तक वहां से अप्रूवल नहीं आएगा हम भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते।
गॉट इट गॉट इट गॉट इट सर। सर
जी
बाकी काफी बढ़िया एग्जीक्यूशन रहा, थैंक यू सो मच, मेरे से
थैंक
इतना।
यू
थैंक यू।
थैंक यू सर। नेक्स्ट अप वी हैव साकेत कपूर, प्लीज गो अहेड सर।
हाँ जी साहब, सर ये सोलर की इस क्वार्टर में 2 करोड़ की सेविंग आप बता रहे हैं पावर कॉस्ट में हुई है, और रैंप अप होके पूरे साल में ये 15 करोड़ हो जाएगी सर, मतलब रिमेनिंग में।
एस्टिमेट ये एस्टिमेट यही है सर, वो जो लगा है सोलर वगैरह, अभी बीच में बारिश भी है तो उतना जनरेशन वगैरह भी कम हो रहा है, और लग रहा है पुल पहले जो पूरे स्मूथ मोल रहे मशीन यदि पूरी स्मूथ चालू होगी तो सेविंग आएगी, जिनसे हमने लिया उनसे तो यही कमिटमेंट है हमारा।
अच्छा सर, क्योंकि अगर हम 2 करोड़ को एनालाइज भी करते हैं 4 क्वार्टर में, तो वो
आठ
आठ आठ
तो
ही
8 करोड़
आठ
हो गए। हाँ वो दिख रहा है
हाँ, तो
सर, एक दो
आप
लेकिन एक पे थोड़ा चालू
एक
बाकी।
मेगावाट
हाँ, अभी आना बचा हुआ भी है उसमें सर। हाँ
जैसे आप 15 कह रहे हैं, वो तो 1 मेगावाट ऐड करने के बाद, और
हाँ
वो भी पूरे
मतलब
बरस का नहीं आएगा, हाँ उसका भी जब आप।
हाँ, ये है हमारा एस्टिमेट है कि फुल फ्लेज चलेगा, तो क्या हमारी मशीन भी उतनी फुल फ्लेज चलनी चाहिए सर? इट
जी
इज लिंक टू प्रोडक्शन वर्सेस सोलर जनरेशन दोनों।
तो सर, ये साल में तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा सोलर का इंस्टॉलेशन जितना
हाँ
करना है,
यस
तो
सर,
फिर नेक्स्ट ईयर सर ये फुल फ्लेजेड में क्या नंबर रहेगा?
वो फुल फ्लेज का ही तो बताया ना सर, 15 करोड़ के आसपास जो हो रहा है वो।
नहीं सर, अगर ये साल में हम इंस्टॉल करने के बाद तो फुल फ्लेजेड तो नहीं परफॉर्म करेगा, तो ये जो
नहीं,
15 करोड़ का नंबर है।
अगले साल आप पूछ रहे हैं क्या रहेगा, तो वो 15 करोड़ ही रहेगा सर, कुछ साल का 15 करोड़ का ही सेविंग का ये है, 15 करोड़ का
हाँ,
हुआ।
तो फिर इस साल 15 करोड़ नहीं आएगा सर, ये कहना चाहूंगा मैं सर।
हाँ
हाँ
ये
हाँ
साल
नहीं है।
नहीं आएगा, लेकिन हाँ जब इंस्टॉल हो जाएगा उससे हम 4 साल 4 क्वार्टर अगर कंपेयर करेंगे तो आपको ये बेनिफिट दिखना चाहिए।
ओके सर। और सर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा जनरली सर ये 26-27% की रेंज में ही रहता है, और जैसे बाबू ने बड़े बाबू ने अभी बताया कि आने वाले समय में जब प्राइस डिक्लाइन या नॉर्मलाइज होगा तो वापस ये नंबर मैच करेगा, तो यही अंडरस्टैंडिंग लेके चलना चाहिए कि ये साल भी 26-27 का नंबर हम मैच करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में।
जी।
ओके सर। और सर ये कच्छ वाला जो आप एक्सपेंशन डाल रहे हैं सर, इसके पीछे में सर मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या, वहाँ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, कोई क्लस्टर है जहां पर हम अपनी यूनिट कर रहे हैं, या
जी
क्या इंसेंटिव है,
मास्टर
या?
सर, वो मार्केट है सर उधर में, आईबीसी का उतना बड़ा मार्केट।
वी आर ऑलरेडी सर्विंग फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, तो वहां
अच्छा
जाने
अच्छा
के बाद एक फ्रेट एडवांटेज मिलेगा, कस्टमर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, एंड आने वाले समय में वहाँ ग्रोथ भी होगा, बिकॉज देर इज अ कच्छ मुंद्रा पोर्ट है वहां पे, तो वी आर एस्टिमेटिंग दैट वॉल्यूम्स विल इंक्रीज, सो बेटर जॉब
वहां से
कॉस्ट
आप
विल।
ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं सर, जहां से मैंने बंगाल वगैरह भी माल जा पाएगा वहां से बाय सी।
ओके। और सर इसका मंथली रन रेट क्या रहेगा हमारा सर रेवेन्यू का, ये 10,000 टन का जो कैपेसिटी है?
8 करोड़, 8.5, मतलब 80-85 करोड़, 8-1 करोड़ रुपया आता है इस महीने का, 7.5-8 करोड़ फुल
फुल फ्लेज चलेगा तो
प्ले करो।
100 करोड़ का बिजनेस समझिए होता है सर, लेकिन हम 50 करोड़ के हिसाब से चल रहे हैं कि 50 करोड़
और जैसे जैसे
चलेगा।
मार्केट हमारे पास कैपेसिटी देगी, मार्केट जैसा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बिजनेस।
करेक्ट जी, ठीक है सर। बाकी आपका प्रेजेंटेशन में बहुत विस्तृत जानकारी आपने दी है सर, इसको आप कंटिन्यू करें। और सर एक एक मेरी तरफ से सजेशन था कि सर जब आपने जब हम कोई प्रेस रिलीज या कोई चीज को जब एक्सचेंज में सबमिट कर रहे हैं तो हमने हेडलाइन को बोल्ड नहीं किया है सर, बहुत छोटी सी पॉइंट है, बट जब अब पिरामिड लिख रहा है कि पिरामिड टेक अनाउंसेस कच एक्सपेंशन एंड गवर्नमेंट सब्सिडी बेनिफिट, वो सर बोल्ड होना चाहिए, वो भी उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में आपकी चिट्ठी है। तो ये सब छोटे मोटी त्रुटियां हैं सर जो इन्वेस्टर्स की आंख में पड़नी चाहिए सर। जैसे आपने बताया ना कि मार्केट क्यों नहीं हमारे नंबर्स को समझ पाया है या कहाँ हमारी त्रुटि रह गई है, तो ये भी एक छोटी सी बात है, बट हमें सही चीज को सही ढंग से उल्लेख भी करना चाहिए। मेरी तरफ से सर एक छोटा सा सुझाव था कि आगे कभी भी आप प्रेस रिलीज
जी
रखें तो उसको बोल्ड करें सर, ये अंडरस्टैंड
जी
की है। बाकी सर बेस्ट विशेष सर, आप लोगों को, आप अच्छा कार्य करें और निवेशकों के लिए वैल्यू बने सर, इसी
ठीक
आशा में है सर।
है, थैंक
धन्यवाद सर,
यू सर, थैंक
थैंक
यू,
यू।
थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम दिवेश वोरा, प्लीज गो अहेड।
सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव पोस्टेड गुड
जी
नंबर्स, अच्छे अच्छे नंबर्स दिए हैं। मुझे थोड़े
जी
थोड़ी इन्फॉर्मेशन और कच्छ के बारे में जाननी है सर। कच्छ में जो लैंड लिए है वो क्या ओन लैंड है या लीज है,
ऑन लैंड लिया है सर मैंने।
और ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जा रहा है उसमें बाइफर्केशन क्या होगा मशीनरी और उसका, तो जस्ट इंडिकेटिव मैं पूछ रहा था।
मेरे को लगता है सर 10 करोड़ रुपए में लैंड और बिल्डिंग बन जाएगी, बाकी मशीन में जाएगा।
अच्छा, और इसमें अप्रूवल्स वगैरह में जो वाडा में जो इश्यू हुए थे फॉर अप्रूवल्स वगैरह,
बाड़ा में भी कोई अप्रूवल में क्या प्रॉब्लम हुई है? मेरे को लगता है ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का थोड़ा धक्का खाने वाला काम है सर, तो महाराष्ट्र में ज्यादा है, गुजरात में कम है। हमको वहां लगता है कि 2-3 महीने में सब कर लेंगे, 6-8 महीने में चालू कर लेंगे वहां प्लांट। हाँ
तो मशीनरीज वगैरह के ऑर्डर्स भी प्लेस हो गए, सब कुछ हो गया।
दिया मैं सर जी।
और ये जो आपने 50 करोड़ का टर्नओवर जो बताया है, और उसका अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी उसी यूनिट का गिनो, तो पेबैक पीरियड क्या होगा या आईआरआर क्या रिटर्न आता होगा?
आप देखेंगे सर लगभग 4 साल में पेबैक है। अभी भी आज पहले भी जब हम आईपीओ लाए थे तो हम बोलते थे हम एसेट करंट एसेट जो रहता है उसका 4 टाइम्स हम टर्नओवर करते हैं। आज भी देखेंगे तो मैं 4 टाइम्स कर रहा हूँ।
अच्छा। ओके मैं क्यू में आता हूँ सर, और कोई सवाल होगा तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम गणेश नागर सेकर, प्लीज गो अहेड।
Oh no, my question is already answered. Thank you.
ओके, पार्टिसिपेंट्स हु विश टू आस्क क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड।
सर एक क्वेश्चन था मुझे, जो आपने जो 35 करोड़ का जो बेनिफिट बताया है साल, वो क्या बेनिफिट हमको कैश बेनिफिट मिलने वाला है या जीएसटी के फॉर्म में या?
जीएसटी वगैरह जो मैंने, लेकिन वहां से कैश ही फॉर्म आएगा। मैंने मेरा जीएसटी उतना पेमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, वहां से हमको गवर्नमेंट से कैश फॉर्म ही आएगा, चेक आएगा, रिफंड आएगा, जीएसटी फॉर्म।
तो आप ये जो पेमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप आपका मैंने देखा है सैंक्शन हुआ है, लेकिन आपको सारे प्रोसेस कंप्लीट करने हैं, तो आप कब तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
मेरे को लगता है 5-6 महीने में आ ही जाएंगे सर, जब अभी तो क्या मेरे से, लेकिन हर साल आना है तो आएगा ही वो तो।
ये बल्क वन अमाउंट आएगा या पार्ट
नहीं
पार्ट
नहीं
में? अच्छा,
10 साल में आएगा
स्प्रेड
लगभग।
ओवर 10 इयर्स।
स्प्रेड ओवर 10 इयर्स। फिर तो आपको ये कच्छ के प्लांट के लिए भी नया डेट लेना पड़ेगा ना?
नहीं सर इंटरनल हो जाए, क्योंकि
अच्छा, इंटरनल
हमने
इक्विटी।
ऑलरेडी ईयर मार्क किया था ना ये साल के लिए डिप्लॉयमेंट।
सर आपका तो ऐसा है ना सर, प्रोजेक्ट डालने के बाद ही अनाउंस करते हो। लास्ट टाइम जब आपने कॉन कॉल किया था तब बोला था कोई प्रोजेक्ट अभी है नहीं, अचानक आपका कच आ जाता। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप एक्सपांशन अच्छा कर रहे हो एंड यू आर डूइंग इट द राइट वे।
सर क्या है, बिजनेस में बैठे हैं अभी, कच्छ में हम नहीं जाएंगे वहां पर। मेरा वहां से हम जब भेजते हैं तो 1,000 रुपये का कॉस्ट है फ्रेट का, कोई दूसरा जाएगा तो मार्केट पकड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा वहां डालने में वहां गेन है, करना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं वहां।
नो, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन सर, इट्स एब्सोल्युटली अ गुड डिसीजन। लेकिन एक ये इश्यू है कि क्या जो कस्टमर्स को आप यहाँ से सर्व कर रहे थे, तो नए कस्टमर्स आपको यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे वाडा और उस जगह पे, तो
जी सर जी,
वो
बाड़ा
डेटा।
से नहीं जाता था, भरूच से जाता था सर वहां से, लेकिन वहां पर तो मान लीजिए यहाँ से 2,000 2,500 आई भी 2,000 जाता होगा, वहां जाने से हमको 10,000 का मार्केट मिल जाएगा।
ओके, और ये 2000 के लिए नए कस्टमर तो रेडी ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
धीरे धीरे तो मार्केट ग्रो भी होता ही है ना सर।
वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। वील वेट फॉर अ मिनट फॉर पार्टिसिपेंट्स टू आस्क द क्वेश्चन। Those who wish to ask a question, please raise your hand. या नेक्स्ट वी हैव
सर
फ्रॉम
सर
अंकित कनोडिया, प्लीज गो
ठीक है
अहेड.
अंकित साहब,
सर ये डेट लास्ट 2-3 साल से जिस तरह से अपना बढ़ा है, लेकिन अब जो सिचुएशन है, क्या आपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा FY 27 एंड FY 28 में?
पेमेंट तो हो ही रहा है सर, जो दो साल लिए, पिछले साल लिए थे, जो प्लान डालने के लिए लिए थे, अभी रीपेमेंट चालू हो गया है ऑलरेडी, वो कम ही हो रहे हैं, घट बढ़ नहीं रहे हैं अभी.
180 करोड़ का टोटल टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल लोन था।
नहीं, 225-30 करोड़ का था सर, 2 साल देखेंगे. ये
तो फिर ये यहां से अभी
तो वर्किंग कैपिटल जो है वो ज्यादा इसलिए यूज होने लगे कि पहले रॉ मेटेरियल हम खरीदते थे 100 रुपए के अंदर में, अभी पहुंच खरीद रहे थे 150 रुपए में, तो वर्किंग कैपिटल लगी ही ना उस समय. अभी भी जो प्राइस है वो 140 रुपये में लेना पड़ रहा है, तो वर्किंग कैपिटल उसमें जा रहा है. 80 करोड़ का टर्म लोन लिया था मैंने, 80-85 करोड़ का, उसमें से रिपेमेंट चालू है, रिपेमेंट हो रहे हैं वो.
वर्किंग कैपिटल तो सर सिंपल सी बात है कि अगर हमारा रॉ मटेरियल का प्राइसेस इतना हाई रहा तब तो वर्किंग कैपिटल लोन भी बरकरार ही रहेगा हमारा, राइट?
हाँ वो तो रहेगा ही सर,
हाँ
वर्किंग
तो
कैपिटल रहेगा ही. मार्केट में भी 175 करोड़ के तो डेट में रहते हैं, 100 करोड़ का स्टॉक रहता है, कोई हेल्दी बैलेंस शीट है सर, कोई इतना बहुत ज्यादा देखता है अपना.
सर लेकिन प्राइस पे कुछ बोल सकते हैं आप कि क्या लग रहा है आपको नेक्स्ट 2-3 साल डायरेक्शनली जो पॉलीमर रेजिन के प्राइस है वो क्या दिख रहे हैं आपको? मतलब डायरेक्शनली मैं एक कोई नंबर नहीं मांग रहा हूं कि यहां से कितना हो
मैंने
जाएगा
बोला,
यार।
ये पहले ही बोला सर कि मेरे को लग रहा है कि 2-4 महीने में 20 रुपये नीचे जाएगा. 100 जो 60 में बेच रहे हैं वो 140 की रेट में आ जाएंगे हम सेलिंग प्राइस में 3-4 महीने में, और आगे जाने के बाद वो जो पुराने रेट है उसी रेट में आ जाएंगे, उससे 10 रुपया ज्यादा हो जाएगा. इतना ज्यादा थोड़ी चलेगा सर, ये तो वार के कारण है जो भी है.
राइट राइट ठीक है सर, थैंक यू।
थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम साकेत कपूर, प्लीज गो अहेड.
जी सर, सर एक हमारा जो फिनेंस कॉस्ट है अभी ये क्वार्टर में 3.5 करोड़ का नंबर है, तो अभी जैसे हमारा ये मैंने वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी लोन की, तो इसमें कोई मीनिंगफुल चेंज इस साल के एंड तक देख रहे हैं कि ये नंबर कैसे शेपअप रहेगा? और सर हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल कितने दिनों का है, मतलब डेटर से पैसा आना अदाई करके कितने दिन में हम वापस कैश जनरेट कर लेते हैं?
70 दिन में आता है,
65 से 70 दिन। ओके, और ये जो नंबर है सर क्वार्टर का 3.5 करोड़ का, ये जैसे आप रिपेमेंट करते रहेंगे तो ये नंबर कैसा दिखता है सर आगे? इसको एनालाइज करना चाहिए कि टोटल ईयर के लिए कितना फाइनेंस कॉस्ट आप फिगर करके मॉडल करके चल लो?
मतलब नहीं समझा, मैं क्वेश्चन नहीं समझा.
मैं फिर से कहता हूँ साहब, जैसे इस क्वार्टर में आपने 3.5 करोड़ का ब्याज डेबिट हुआ है, आप जैसे बता रहे हैं कि हमारा रीपेमेंट साइकिल भी है, हमारे यूटिलाइजेशन लेवल्स भी इंप्रूव करेंगे, एफिशिएंसी भी
साल
आएगी।
के अंत
हाँ
तक हम, कोई साल के अंत तक का ये 3 करोड़ पे चले पहुंच जाएंगे, हम साढ़े
ओके
तीन
ठीक।
करोड़ घट जाएगा. रेंडमली बहुत ज्यादा फॉल थोड़ी हो जाएगा, लेकिन हाँ
नहीं
50
सर
लाख
एनडब्ल्यू तो नहीं होगा, नहीं सही है सर, नॉर्मल कोर्स में ये 3 करोड़ पे जाकर रुकेगा। और सर जैसे एम्प्लॉयज के और वेजेस के भी काफी इश्यूज कई जगह कई पार्ट ऑफ द कंट्री में बने हैं, तो हमारे लिए एज सच एम्प्लॉय की अवेलेबिलिटी या वेज रिलेटेड कोई कोई संभावना है कि वी आर ऑन अ स्मूथ ट्रैक?
संभावना हर समय हर बुरी चीज की रखनी चाहिए,
बिल्कुल सही
अच्छी
सर,
तो है, आप कोशिश तो करते हैं सब मैनेज करें, संभावना से कैसे इनकार किया जा सकता है कोई. अभी
राइट सर राइट, बट अभी तक ऐसा कोई फैक्टरिंग नहीं है ये
तक
जो।
तो ऐसा कुछ नहीं है.
ओके ठीक है साहब, सर विस्तृत जानकारी देने के लिए एंड ऑल द बेस्ट अगेन सर।
थैंक यू
सर.
थैंक यू सर.
थोड़ा मैं दिवेश बात कर रहा हूँ सर, मुझे थोड़ा रॉ मटेरियल कॉस्ट पे और सेलिंग प्राइस पे थोड़ा.
वन सेकेंड सर, आई जस्ट अनाउंस योर नेम बिकॉज दिस इज रिकॉर्डिंग, सो वी नीड टू गो विद द फॉर्मैट. रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम दिवेश वोरा, प्लीज गो अहेड नाउ.
सर मुझे थोड़ा
जी
ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट आप और ये सेलिंग प्राइस का मैथमेटिक्स थोड़ा थोड़ा मुझे समझ नहीं पड़ा है, इफ यू कैन एक्सप्लेन. बिकॉज आपके पास मार्च मार्च तक जो स्टॉक था दैट वुड बी एट अ वेरी लेस प्राइस, एंड आपने वो स्टॉक को अगर बेचा है और अगर उस और आपने
देखिए, मार्च का जो भी था ना सर, वो तो मार्च का जो फरवरी में वो इफेक्ट आया था, मार्च में वो जो आया मार्च के समय में, जो मैंने क्वार्टर मार्च का जो क्लोज हुआ था ना 31 मार्च, वो उस समय तक सब स्टॉक खत्म हो गए थे. उस मार्च के बाद से जो माल ले रहा हूं मैं, अप्रैल से वो सेल हो रहा है.
ओके
We are sorry. An application error has occurred.
ओके
बाय।
तो अभी तो ये जो मार्जिन है वो इंटैक्ट ही रहेंगे या आप उसमें इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं?
इम्प्रूवमेंट ही है सर, वो इम्प्रूवमेंट मेंटेन रह जाएगा।
अच्छा ओके
थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम कुमार सौरभ, प्लीज गो अहेड।
सर, अभी तक हमारा ग्रोथ अच्छा रहा है और ये कैपेक्स के साथ अभी भी ग्रोथ दिखेगा, बट अगर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स देखें तो जैसे इंडिया में वी हैव अ गुड मार्केट शेयर, तो जो मार्केट का ग्रोथ रेट है यूजुअली वही ग्रोथ रेट होता है जब मार्केट शेयर बहुत बढ़ जाता है। तो अगर हमें 15%+ पे ग्रो करना है अगले 4-5 साल के लिए, वेयर डू यू सी द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सर, प्रोडक्ट वाइज एंड ज्योग्राफी वाइज?
साउथ में भी जाएंगे, ज्योग्राफी वाइज चेंज करना पड़ेगा, जैसे कच्छ गया वैसे अलग अलग लोकेशन में, नॉर्थ भी साउथ भी ये सब जगह है ना खाली साहब।
तो अभी हमारे लिए काफी मतलब ग्रोथ के एवेन्यूज अभी भी खाली हैं।
हाँ, जरूर है ना,
ओके ओके
इसको यहाँ से डबल ही करेंगे काम को, उससे थोड़ी नीचे रुकेंगे।
ओके सर। और आपने बोला सर कि सोलर का जो पूरा 15 करोड़ का बेनिफिट है FY 2028 से आने लगेगा, पूरा पूरा का पूरा साल का, तो 15 करोड़ वो और फिर रिसाइकलिंग का, तो FY 2028 Q1 से एटलीस्ट 4 करोड़ का सीधे सीधे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो बेनिफिट आना चाहिए, और प्लस
अरे
सब्सिडी जो मिलेगी वो भी है सर 10 साल की, उससे पर साल पर ईयर कितना आएगा?
भाई, 3.5 करोड़ के आसपास हो रहा है ना सर साल का। थैंक
ओके 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 सर, थैंक्स अ लॉट सर।
यू।
थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम दीपेश संचेती, प्लीज गो अहेड।
सॉरी सर, लेट ज्वाइन किया क्योंकि मुझे एक दूसरे
ओके
कॉन्फ्रेंस पे था।
नमस्ते।
एक तो पूछना सर, इन्वेंट्री लेवल अपना इस बार जो मैक्सिमम प्राइस फ्लक्चुएशंस हुए वो इसी क्वार्टर में हुए, Q1 में, तो इस ये क्वार्टर में अपना इन्वेंट्री
नहीं,
किसके साथ?
लास्ट क्वार्टर में हुआ
लास्ट क्वार्टर के एंड में हुआ था, बट मेजर डिफरेंस हुआ था ये क्वार्टर में।
था, इस क्वार्टर में तो रेट कम हुआ है। जो मार्च में 100 मैंने कंपनियों के रेट 160 थे,
सही,
वो में तो 140 इस क्वार्टर में कम हुए।
क्योंकि लास्ट क्वार्टर के अपने कॉन कॉल में कहा था कि इन्वेंट्री गेन विल कम ड्यू टू द 45 डेज इन्वेंट्री, जो 45 डेज का इन्वेंट्री हम रखते थे, प्राइसेस
मार्च में
कम हुए।
आया, उसमें उसमें 2-1 करोड़ रुपया आया था मार्च का जो रिजल्ट था उसमें। मेरे को
सही,
लगता है 2 करोड़ रुपया इन्वेंट्री का बेनिफिट था।
सो इस क्वार्टर में कोई भी इन्वेंट्री गेन नहीं था।
जो स्टॉक चल रहा है, जो नॉर्मल चल रहा है काम, वैसे चल रहा है।
ओके ओके और एक और क्वेश्चन था, आई थिंक वो आज एड्रेस हो चुका है, बट फिर भी ये जो नई फैसिलिटी हम डाल रहे हैं, और अच्छा है कि सर आप पहले अनाउंस नहीं कर रहे, और यू नो एवरीबडी ऑल द इन्वेस्टर्स गेट टू नो टुगेदर, बट ये जो नई फैसिलिटी हम डाल रहे हैं कच्छ में, उसमें इस कस्टमर को हम पहले से सप्लाई करते थे, और कितना सप्लाई करते थे?
नहीं, लगभग 2000 का एबीसी का उस एरिया में मार्केट हम कर रहे थे, लेकिन वो पूरा हम मैंने कम 2000 से नीचे नीचे ही सप्लाई थी, लेकिन वो 10000 का वहां पर ओवरऑल हम सर्वे किए तो मार्केट है, इसके लिए हम वहां शिफ्ट हो रहे।
तो ये तो जब तक हमारी फैसिलिटी ऑनलाइन नहीं आती, जो विल बी आई थिंक अराउंड मार्च 2027, तब तक हम कस्टमर को अपने भरूच प्लांट से सप्लाई करते रहेंगे, राइट?
करते रहे,
सॉरी, आवाज नहीं आ रही सर।
नहीं भरोसे कर ही रहे हैं सर, अभी भी करे, जब तक वहां चालू नहीं होगा तब तक यहाँ से जा ही रहा है ना माल,
ओके
लेकिन वो आधा पड़ता जा रहा, वहां जाने के बाद ज्यादा मार्केट शेयर मिल जाए।
अच्छा, और ये पूरा मार्जिन हमें ही मिलेगा या वी विल आल्सो शेयर इट विद द कस्टमर?
कस्टमर
अच्छा
बेनिफिट, कस्टमर को कुछ नहीं देंगे तो हमारा जब गए तो वहां का मार्केट ऐसे तो नहीं मिलेगा, कुछ तो आपको शेयर करना पड़ता है।
इनिशियली तो आपको देना पड़ेगा, बाद
तीस
में वो
तीस
एडजस्ट हो जाएगा।
30% कस्टमर को देना पड़ेगा, 70% आपको मिलेगा उसका बेनिफिट।
अच्छा, ग्रेट ग्रेट। एंड इसमें इस बार ये मार्जिन्स में क्यों इतना फर्क पड़ा सर? When I compare it to the last quarter, year on
बोलिए
year नहीं, last quarter से।
क्या क्या मार्जिन में बताइए ना, हम क्वेश्चन बताइए साफ साफ।
नहीं, when I see the margins, EBITDA margins of the gross profit margin also, अगर ये gross profit margin का ये quarter में देखता हूँ तो 23% आता है, जो last दोनों quarter से कम था।
इसका कारण नहीं है ये
अच्छा
भेज
सेल्स ग्रोथ अच्छा
ये
देखा है हमने, बट ये मार्जिन जो
पिछले
कम हुआ है वो
क्वार्टर
किस वजह से हुआ है?
वो नहीं, पिछले जो
जबकि
क्वार्टर
जबकि
मार्च में,
हमारा, सॉरी नहीं
बोलिए बोलिए बोलिए, आपको
नहीं
अगर मैं
जबकि
बोलूँ।
हमारा इसमें सोलर ग्रोथ होने वाला था, जबकि हमारा इसमें आप जो सब्सिडीज है शायद वो आने वाली थी। ये मतलब मार्केट को यही फ्रेंकली डिसअपॉइंटिंग यही लगा कि ये क्वार्टर हमें बम्पर क्वार्टर लग रहा था जो नहीं आया।
बोलिए आप
इसके हिसाब से मार्केट ने शायद थोड़ा ये रिएक्शन दिया है। तो आई जस्ट
जी।
वांट टू अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं आया है और मार्जिन इस तरह से क्यों नहीं आया, क्योंकि मार्केट हर जगह देख रहा था कि ये क्वार्टर में सारी जो आपकी रिलेटेड कंपनीज है उन्होंने इन्वेंट्री गेन भी बताया उन्होंने, और आपके तो सोलर कॉस्ट भी कम होने वाली थी, तो उसके हिसाब से वी वर एक्सपेक्ट द एक्सपेक्टेशन से कम आया। रिजल्ट्स आर वेरी गुड बट एक्सपेक्टेशन से कम आया इस हिसाब से। तो वही जानना चाहता हूँ सर कि मार्जिन क्यों कम आए।
बोलिए आप, बोलूँ मैं?
यस सर एब्सोल्युटली
आपका
योर
सुना
फ्लोर।
होगा, पिछले क्वार्टर में जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो 138 रुपीज का था, मार्च में, मार्च क्लोज में। इस बार जो मेरा सेलिंग प्राइस है पॉलीमेडियम का 193 रुपीज पर किलो है,
1 नहीं,
55 रुपीज सेलिंग प्राइस बढ़ गया, तो परचेज
ओके,
प्राइस भी वैसे ही बढ़ा होगा। तो जो चीज हम आप ग्रोथ देख रहे हैं कि जो हम पहले भी बोलते थे कि 100 रुपए का यदि हम मार मटेरियल लेके 120 में बेचते हैं तो 150 का लेंगे तो भी 170 में ही बेचना पड़ता है, या 1 रुपया ज्यादा मिल जाए तो कॉस्ट जो इतना रुपया 50 रुपए का जो सेलिंग प्राइस चेंज है, तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, अरे वैल्यू वाइज तो बढ़ गया और वॉल्यूम कम हो गया, रिजल्ट ऐसा कुछ भी नहीं। सोलर का जो अदर एक्सपेंस देखेंगे तो 2 करोड़ से सोलर का पावर का सेविंग हुआ वो आया ही है।
बराबर।
तो सोलर वाले भी ये बोलते हैं कि पहले दिन से सोलर चालू होते ही बटन चालू कर दिया, पूरा का पूरा नहीं मिलने लगता, वो मशीन स्मूथ होती है, सब होता है, जो जो पावर लॉस हो रहा है उसे कैलकुलेट करके 6 महीना उस सब में जाता है। तो जो जो मैंने बोला था वो सब हुआ है, आपको समझने में जो दिक्कत आ रही है अलग बात है।
मैं तो
यदि
मार्केट की
हमको
बात कर रहा हूं।
चार, हाँ मार्केट जो भी है, आप भी है उसमें से, आप भी क्वेश्चन कर ही रहे हैं ना, तो चार, यदि हम बोल रहे हैं कि वॉल्यूम मेरा 4% ओवरऑल कम हुआ है और उस कोर्स सेल बढ़ा है, 222 को हुआ है 196 से, तो उतना आपको जो ईपी डाटा या जो भी चीज देखते हैं तो आप 222 पे देख रहे हैं, 190 पे नहीं देख रहे हैं।
राइट,
वही 190 पर देखेंगे तो आपको लगेगा यार बोल रहे 4-12% का ईपी डाटा है, समझ
गॉट इट,
रहे हैं?
परफेक्ट 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 सर। और जो 34 करोड़ से जो आने वाला है वो ये साल से ही शुरू हो जाएगा या मतलब ये साल से ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसको,
क्या 32
जो सब्सिडीज आने वाली है जो
सब्सिडी
10 साल के
सब्सिडी हर
बाद,
साल 10 साल में आएगी, इस साल से आएगी
तो ये साल से ही हमारे शुरू हो जाएगी राइट। सॉरी
जी। हाँ इस साल से हो
ये
जाएगी, इस
साल
साल
से
इस फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड स्टार्ट गेटिंग, बट वो ये कौन से क्वार्टर में आएगा ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है, सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट शोइंग एनीथिंग।
बट दैट्स ओके, सिंस इज गोइंग टू कम इन दिस ईयर
बिल्कुल
तो वी कैन टेक अ ईयर ऑन ईयर
बिल्कुल,
परफॉर्मेंस ऑल्सो। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच एंड
थैंक
ऑल द
यू
वेरी बेस्ट।
थैंक
थैंक
यू सर। आई जस्ट हैंड ओवर टू जय सर फॉर क्लोजिंग रिमार्क्स। वी आर गुड विद द क्वेश्चंस नाउ, सो ओवर टू यू सर।
थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आई वांट टू से दैट सी वी हैव टेकन टू मेजर इनिशिएटिव दैट इज सोलर एंड रिसाइकलिंग व्हिच विल ऐड अप टू द कंपनीज बेनिफिट आल्सो एंड आल्सो इट विल रिप्रेजेंट टू रिड्यूस कार्बन प्रिंट फुटप्रिंट ऑफ आवर कंपनी एज वेल एज इंडिया, एंड वी आर मैपिंग एंड वी आर फॉलोइंग इंडियाज कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर्स डायरेक्टिव दैट वी वॉन्ट टू रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट, सो वी आर ऑन ट्रैक विद दैट एंड वी आर वन ऑफ द फ्यू कंपनीज इन इंडिया हु हैज बीन इंस्टॉल्ड सोलर एंड रिसाइकलिंग बोथ टूगेदर, सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप मोटिवेटिंग अस लाइक दिस, थैंक यू सो मच। थैंक्स सो मच, थैंक
थैंक यू सर, थैंक्स एवरीबडी फॉर योर टाइम।
यू।
ओके विजय जी, थैंक यू, थैंक
ओके नमस्ते सर, थैंक यू
यू,
सर,
ओके, ओके।
थैंक यू सर।